వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. లాస్ట్ వీక్ హమ్నే కేవల్ ఏక్ హీ క్లాస్ కియా థా నా శాయద్ సాటర్డే సండే క్లాస్ నహీ హో పాయా థా. और हम जहां पे हमने एंड किया था वो पृथु महाराज के पिता का डिस्कशन चल रहा था. एक्चुअली हमने प्रारंभ किया था कि ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल जो कि मुक्त मुक्त जीव थे, मुक्त आत्मा थे, और जन्म से ही ध्रुव महाराज के जो पुत्र थे वो उनका मानसिक समत्व बहुत अच्छा था, मतलब भगवान के बहुत एडवांस भक्त थे, तो इसलिए वो भौतिक संसार में फंसना नहीं चाहते थे. तो लोगों को दिखाने के लिए वो एक इस तरह से सामने से दिखाते थे जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो. और इवेंचुअली वो घर से चले गए और जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि ये उत्कल जो है ये तो मूर्ख है, तो उत्कल को शासन नहीं दिया गया. उत्कल के छोटे भाई वत्सल ने राज्य किया. ये दोनों ध्रुव के पुत्र थे और वत्सल के पांचवें जनरेशन में तक चक्षुषा आते हैं. चक्षुषा पर्सनालिटी जो है ये छठवें मनु कहलाते हैं. जैसे अभी सातवें मनु जो है वो है विवस्वान के पुत्र, सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु, जिनके बारे में भगवद्गीता में बताया गया है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्यय. तो इसी तरह से छठवां मनुवंत, इसके पहले जो मनु थे उनका नाम था चक्षुषा, वो ध्रुव महाराज के वंश में आए थे. चक्षुषा के 12 पुत्र होते हैं, उनमें से सबसे छोटे उल्मुख होते हैं. उल्मुख के 6 पुत्र हैं जिसमें से सबसे बड़े अंग होते हैं. राजा अंग भगवान के महान भक्त हैं, शास्त्रों में इनका नाम आता है, बहुत बड़े भक्त हैं. परंतु इन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों ने बहुत अच्छे से मंत्र का जप किया, यज्ञ बहुत अच्छे से हुआ, उसके बाद भी देवता लोग प्रकट नहीं हुए यज्ञ के भार को स्वीकार करने के लिए, उनके भाव को स्वीकार करने के लिए. तो राजा को बहुत दुख हुआ, उन्होंने पूछा अपने ब्राह्मणों से कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई राजा मतलब कोई देवता आए नहीं अपने ऑफरिंग लेने के लिए. तो ब्राह्मणों ने बोला कि एक्चुअली इस लाइफ में तो आपने कोई पाप नहीं किया है, पर पिछले लाइफ का आपका जो कार्य है पाप है, उसके कारण आपके आपका कोई पुत्र नहीं है, आप सनलेस हैं. इस तरह से ब्राह्मणों ने बताया और ये सुन के राजा अंग बहुत दुखी हुए. और ब्राह्मणों ने फिर उसके बाद ये एक उपदेश भी दिया कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्रीफाइस करेंगे भगवान विष्णु के लिए तो भगवान विष्णु संतुष्ट होंगे, तो देवता भी आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु अगर किसी यज्ञ में आते हैं तो देवता भी उनके साथ आते हैं. तो जब ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु को के नाम से आहुति लगाई तो एक व्यक्ति प्रकट हुए स्वीट राइस लेके, खीर अपने हाथ में लेके प्रकट हुए, जो कि पूरी तरह से वाइट ड्रेस में थे और जो खीर का जो बर्तन था वो सोने का गोल्डन पॉट था. ब्राह्मणों से इस प्रकार परमिशन लेके राजा अंग ने उस पॉट को स्वीकार किया और उस खीर को उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को दिया. और उस खीर को देने के सुनीता ने जब खाया, उस खीर के अंदर शक्ति थी कि कोई मेल चाइल्ड मेल पुत्र कोई पुत्र पैदा होगा, तो उसके कारण इवेंचुअली सुनीता के गर्भ से वेणा नाम से एक बालक का जन्म हुआ. और लास्ट टाइम हमने यहां तक डिस्कस किया था कि पुत्री जो है वो पिता का लक्षण प्राप्त करती है सामान्यतः, और पुत्र माँ का लक्षण प्राप्त करता है. सामान्य इस प्रकार से नियम है कि पुत्री के अंदर पिता के गुण आते हैं और पुत्र के अंदर माँ के गुण आते हैं. तो चूंकि सुनीता के पिता जो थे वो बहुत अधार्मिक व्यक्ति थे, डेथ पर्सोनिफाइड लिखा है भागवत के अंदर कि सुनीता के पिता बहुत अधार्मिक थे, तो सुनीता के अंदर भी वो गुण थे और उनके पुत्र के अंदर वो ही गुण गए, क्योंकि सुनीता के अंदर उनके पिता से गुण आए और सुनीता के गुण उनके पुत्र के अंदर गए। तो यद्यपि उसका जन्म वेणा अंग का अंग राजा अंग के समान महान राजा के गर्भ महान राजा से हुआ, परंतु वेणा जो है वो वास्तविकता में अधार्मिक व्यक्ति निकले। वेणा शास्त्रों में बहुत कुख्यात है, जिस प्रकार से दुर्योधन कुख्यात है उसी प्रकार से वेणा कुख्यात है। जब से छोटे से थे उसी समय से वेणा जंगल में जाते थे और बहुत सारे पशुओं को अननेसेसरी मारते थे, देखने से ही बहुत भयानक लगते थे। जैसे ही वो सिटी से निकलते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये कितना निर्दयी वेणा आ गया, और लोगों को जबरदस्ती मारना परेशान करना। इतने ज्यादा खराब थे कि जब वो अपने मित्रों के साथ खेलते थे, अपने मित्रों के साथ, तो अपने मित्रों को ही मार डालते थे, उनकी एज के बच्चों को मार डालते थे। इतना ज्यादा डेंजरस, इतने ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के थे। जैसे पशुओं को मारा जाता उस प्रकार से वो आदमियों को मार देते थे, छोटे बच्चों को मार डालते थे। और राजा अंग उनको लगातार दंड देते थे, बहुत सारे दंड मिलते थे, परंतु ये सुधरते ही नहीं थे, और केवल एक ही बच्चा था। जब इस प्रकार से हुआ तो राजा अंग को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, परंतु उन्होंने सोचा कि राजा अंग सोचने लगे कि जिन लोगों के कोई बेटा नहीं है वो शायद मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। कई बार ऐसा है कि जब कोई खतरनाक बेटा मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि बेटा नहीं होना ही ज्यादा अच्छा है। तो राजा अंग इसी प्रकार से सोचते हैं कि जिन लोगों के कोई पुत्र नहीं है वो बहुत फॉर्चुनेट है, उन्होंने शायद भगवान को अच्छे से पूजा की होगी, जिससे कि उनको कोई पुत्र पुत्र प्राप्ति नहीं है, क्योंकि लोग पुत्र को प्राप्त करते हैं तो अटैच हो जाते हैं। तो राजा अंग सोच रहे हैं कि अगर किसी का पुत्र नहीं है तो वो शांति से वानप्रस्थ लेके जा सकता है, नहीं तो लोग अपने बच्चों से अटैच हो जाते हैं। तो व्यक्ति को अपने पुत्रों से अटैच इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन बाधित हो। तो राजा अंग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि बुरे बच्चे होने से अच्छा है कि बच्चा नहीं हो, परंतु बाद में फिर सोचते हैं कि एक्चुअली बुरा बच्चा भी अच्छे बच्चे से अच्छा है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा बहुत अच्छा होता तो हो सकता मैं उससे अटैच हो जाता और भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, वानप्रस्थ आश्रम धारण नहीं कर पाता, परंतु ये बच्चा इतना खराब है कि अभी कम से कम मैं अब सब कुछ छोड़ के भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं अटैच हो सकता था। तो चूंकि भगवान के भक्त थे इसलिए इस सिचुएशन में भी उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा है कि मेरा ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ कि मुझे वैराग्य के लिए मदद कर रहा है। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि खराब पुत्र होना ज्यादा अच्छा है अच्छे पुत्र होने की बजाय, क्योंकि खराब पुत्र होने से हम
और
डिटैच हो सकते हैं, समझ जाते हैं कि इस संसार में कुछ ज्यादा है नहीं और चले जाते हैं। ऐसा राजा अंग सोचने लगे, और ऐसा सोचते सोचते एक दिन रात में जब सभी लोग सो रहे थे राजा अंग अपना राज्य छोड़ के चले गए, और जब सुबह ऐसा पता चला कि एक अनम्यूट कर सकते हैं, ओके। तो जब सुबह इस प्रकार से पता चला कि राजा अंग गायब है, तो जो मंत्री थे और मिनिस्टर्स, मंत्री और उनके मित्र और रिश्तेदार सभी एकदम अलार्म्ड हो गए कि क्या हो गया, राजा कहाँ चले गए। सभी लोग सोच ढूंढने लगे कि राजा अंग कहाँ है, परंतु जब राजा को नहीं प्राप्त किए तो तुरंत इमरजेंसी मीटिंग हुई, भृगु मुनि और जितने भी ब्राह्मण थे राजा के राज्य में वो सबकी मीटिंग हुई, और इन्होंने सोचा कि अभी बिना राजा के प्रजा तो अच्छी नहीं है, परंतु वो जानते भी थे कि वेणा जो है वो ठीक व्यक्ति नहीं है, उसको राजा बनाना मुश्किल है, परंतु कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अगर राजा नहीं रहता है तो हमेशा डकैत और चोर लोग अटैक करते हैं और पूरे राज्य खराब हो जाता है, क्योंकि राजा जो है वो उनको बचा के रखता है, तो कभी भी राजा की अनुपस्थिति अच्छी चीज नहीं है। और उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है वेणा को जिम्मेदारी मिले तो वो सुधर जाए, और इस प्रकार से उन वेणा की माँ को पहले बुलाया, सुनीता को बुलाया, और वेणा को राजा बना दिया। सबको ये पता था कि वेणा बहुत खराब है, राजा बनने लायक नहीं है, परंतु उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा। वेणा के राज्य राज्य संभालने से एक बहुत फायदा हुआ तुरंत, कि जितने भी चोर डकैत कातिल लोग थे वो लोग वेणा से इतना डरते थे, उनने सोचा था ये तो हमसे ही खतरनाक डकैत है, तो वो सब भाग गए राज्य छोड़ के। जब उन्होंने देखा कि राजा इतना खतरनाक डकैत है, इतना खतरनाक व्यक्ति है, तो उसके सामने हम तो कुछ नहीं है, तो वेणा के डर से सब भाग गए। परंतु उससे क्या हुआ कि वेणा खुद ही प्रजा को एक्सप्लॉइट करने लगा। वेणा बहुत शक्तिशाली हो गया और बहुत घमंड हुआ उसको अपनी शक्ति के ऊपर, और वो सोचने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। राज्य में बैठने राजा राजा के शासन पर बैठने के बाद वेणा अपने राज्य में जाता था और ब्राह्मणों से बोलता था कि भगवान विष्णु का यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे देवता जो है वो राजा में उपस्थित होते हैं, राजा सभी का प्रतिनिधि होता है, नर देव बोला जाता है राजा को, इसलिए आपको भगवान विष्णु या देवताओं को यज्ञ करने की जरूरत नहीं, सारे यज्ञों का फल मुझे दो। तो उसने ब्राह्मणों को यज्ञ करने से मना कर दिया, और सारे जो पुण्य के कार्य थे वो भी बंद कर दिए। जब इस प्रकार से हुआ तो फिर से मंत्रियों फिर से ब्राह्मणों की मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग हुई, और इन लोगों ने सोचा कि अभी ऐसी हालत हो गई है, जैसे उसमें उदाहरण आता है भागवत में कि हम लोगों की ऐसी हालत हो गई है जैसे कोई चींटी है वो लकड़ी के दोनों तरफ आग जल रही है, वो बीच में चींटी फंस गई है, इस प्रकार से हमारी हालत हो गई है। अगर वीणा को हटा देते हैं तो जो चोर डकैत जो भाग गए हैं वो लोग वापस आके परेशान करेंगे, और वीणा रहता है तो वीणा परेशान करेगा। तो इन सबको समझ में नहीं आया था क्या सोल्यूशन है, और जब वो लोग नहीं समझ पाए तो उन्होंने सोचा कि एक बार जाके कम से कम प्रयास करना चाहिए, राजा से जाके उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्राह्मण यही सोच के गए थे कि राजा को हम प्रयास करेंगे, अगर नहीं समझा तो फिर उसको हटाने का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना होगा। ऐसा सोच के ये लोग राजा वीणा के पास जाते हैं, और चूंकि राजा के पास जाते हैं सबको अंदर बहुत गुस्सा रहता है, परंतु राजा के सामने इस प्रकार से नहीं बोल सकते, तो राजा के सामने बोलते हैं कि हे राजन, हम आपके पास आए हैं आपको कुछ सलाह देने के लिए, तो ध्यान से सुनिए हम जो बोल रहे हैं, अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो आपका जीवन बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। जो भी शास्त्र के नियम के आधार पर कार्य करते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोकों में जाते हैं, और जो लोग धर्म पे काम नहीं करते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो इसलिए हे राजा, आपको धर्म के सिद्धांतों को खत्म नहीं करना चाहिए, अगर आप अपने प्रजा के धार्मिक प्रोग्रेस को रोकेंगे तो आपका पतन हो जाएगा, क्योंकि राजा का ये धर्म है कि सभी को प्रोटेक्शन प्रदान करे, और साथ साथ राजा का ये भी धर्म है कि लोगों को वर्णाश्रम सिस्टम में लगाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शासक है उसका ये हमेशा ड्यूटी नहीं है कि हमेशा अच्छे अच्छे से बात करे लोगों से, उसको कभी कभी स्ट्रांग भी होना पड़ता है, कभी कभी माइल्ड भी होना पड़ता है। अगर कोई अधर्म के रास्ते पे है, जैसे परीक्षित महाराज के बारे में फर्स्ट कैंटो में ही आया था, परीक्षित महाराज जो थे साधु पुरुषों के लिए वो अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, परंतु जो अधार्मिक लोग थे उनके लिए परीक्षित महाराज एक यमराज के जैसे प्रतीत होते थे। अधार्मिक लोग उनसे बहुत डरते थे और धार्मिक लोग उनको पसंद करते थे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पुलिस से वो ही डरता है जैसे चोरी किया या कुछ क्राइम किया, सामान्य आदमी जिसने कुछ नहीं किया उसको पुलिस से डर नहीं लगता, उसको पुलिस प्रोटेक्ट करती है। तो ये राजा का कर्तव्य है कि लोगों को वर्णाश्रम में लगाए, इस प्रकार के सिस्टम में लगाएं कि लोग कृष्ण चेतना को प्राप्त हों धीरे धीरे। अगर कोई राजा देखते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजन की जा रही है तो राजा भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं इसलिए देवता भी प्रसन्न होते हैं, परंतु अगर राजा यज्ञों को रोक देगा तो भगवान भी नाराज होंगे और देवता भी नाराज होंगे। इतना बोल के ब्राह्मण लोग शांत हो गए, और ब्राह्मणों की बात सुन के वीरेंद्र ने क्या बोला कि ये बहुत दुख की बात है कि आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है धर्म का, आप लोग धर्म के बारे में जानते ही नहीं हो, और धर्म की आड़ में आप मुझे अधर्म सिखा रहे हो। हम समझ सकते हैं भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण थे, भृगु मुनि को आप सभी जानते हैं, भृगु मुनि वो थे जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को चेक किया था कि उनमें से कौन सुपीरियर है। तो जिस ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति है कि विष्णु जी की छाती में भी वो मार सकते हैं, उस ब्राह्मण को ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर कोई अनुभव नहीं है, राजा वेण इस प्रकार से बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, आप एक एक ऐसी स्त्री के समान है जिसके अंदर कोई सतीत्व नहीं है, वो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाती है। आप जिस भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, मैं वही भगवान विष्णु हूँ, वही उनके ही प्रतिनिधि हूँ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं विष्णु की पूजा करने के लिए, इसलिए आप लोग धर्म को जानते ही नहीं। जो लोग आप देवताओं की पूजा करने जा रहे हो उसकी बजाय आप मेरी पूजा करो, तब आपको धर्म पता चलेगा। और फिर बोलता है कि आप सारे देवताओं के प्रति इतने समर्पित हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि, सबके सब केवल राजा के पार्ट एंड पार्सल है, राजा का एक्सपेंशन है, और राजा जो है वही भगवान है। इस प्रकार से उसने अजीब सा फिलोसफी जनरेट किया, रावण के टाइप का फिलोसफी, कि सभी के सभी देवता राजा से ही निकल के आते हैं, जबकि एक्चुअल फिलोसफी है कि राजा केवल प्रतिनिधि है। जैसे आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार से राजा प्रतिनिधि है। राजा को ये सोचने का अधिकार नहीं है कि वो भगवान है। तो इस प्रकार से उसने बोला कि अगर आप वास्तविकता में बुद्धिमान है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, और आपको सारे यज्ञ मुझे खुश करने के लिए करना चाहिए। तो अपने इतने पाप के जीवन के कारण राजा वेण जो था वो धर्म के सारे सिद्धांतों को भुला चुका था, और जब वेण के ये सब बातें सुनी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों को बहुत दुख हुआ और साथ में गुस्सा भी आया। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि गुस्से में उन्होंने केवल एक बार जोर से बोला कि ये राजा मर जाए, और तुरंत राजा राख बन गया। राजा वेण जो है तुरंत पूरा बॉडी जल के राख बन गए, राजा की मृत्यु हो गई। उन्होंने बोला अगर ये राजा जिंदा रहता तो बहुत मुश्किल था, संसार ही खत्म हो जाता, अच्छा हुआ ये मर गया। और क्योंकि ये भगवान विष्णु के को भी इंसल्ट करता है, तो ब्राह्मणों ने इस प्रकार से वेणा को मार दिया। तो इससे हम समझते हैं कि राजा यद्यपि सभी का स्वामी है, परंतु ब्राह्मणों को अधिकार है कि अगर राजा धर्म के रास्ते पे नहीं है तो ब्राह्मण उसको हटा सकते हैं। राजा से बड़ी शक्ति ब्राह्मणों की होती है। इसलिए आप देखेंगे राजा को राजा बोला जाता है, सन्यासी इसको महाराजा बोला जाता है, महाराज बोलते हैं। तो महाराज का मतलब है कि महान राजा, राजा के भी ऊपर माना जाता है। ब्राह्मण और वैष्णव जो है वो हमेशा राजा के ऊपर माने जाते हैं, राजा उनके अंडर में माना जाता है, उनके बिहाफ में। एक्चुअली क्या है, परशुराम जी ने जो पूरी जमीन दान दी थी वो ब्राह्मणों को दान दी थी, ब्राह्मणों के प्रतिनिधि को दान दी थी। तो पूरा संसार ब्राह्मणों का है, चूंकि ब्राह्मण राज्य करना नहीं चाहते, ब्राह्मण अपने धर्म का कार्य करना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने अपनी खुद की जमीन राजा को राज्य करने के लिए दी है। तो राजा जिस जमीन पर राज्य करते हैं पूरे संसार में, वो सभी ब्राह्मणों की जमीन है, वैष्णवों की जमीन है, और वैष्णवों के बिहाफ में वो राज्य करते हैं। इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव किसी भी राजा के उसमें नहीं आते हैं, अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो जब सभी के सभी ऋषि मुनि इस प्रकार से राजा को मारने के बाद चले गए, सुनीता बहुत दुखी हुई, और सुनीता ने वीणा के शरीर को प्रिजर्व किया, कुछ सब्सटेंस या औषधि डाल के तेल में रख के उसको प्रिजर्व किया। और कुछ समय बाद जब ऋषि मुनि साथ में फिर से बैठते हैं सरस्वती नदी के किनारे, तो वो फिर बात करते हैं कि वीणा के मरने के बाद फिर से सोसाइटी में समस्या आ रही है। उस समय ऋषि मुनि देखते हैं कि बहुत सारा सामने से बहुत धूल निकल के आ रही है, और इतने सारे चोर डकैत जो थे, जो वीणा के कारण शांत हो गए थे, वो सभी फिर से आके लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सब देख के ऋषि लोग फिर से परेशान हुए कि वीणा को मारने के बाद भी समस्या चल रही है। हालांकि ये ऋषि शक्तिशाली थे, वो खुद भी इन सब चीजों को समाप्त कर सकते थे, परंतु सामान्यतः ब्राह्मण सोचते हैं कि ये उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, ये क्षत्रियों का कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन करना। और ब्राह्मण इस प्रकार से होते भी नहीं है कि वो इस प्रकार से कार्य करें, इसलिए ब्राह्मण रेगुलर उस कार्य में नहीं लगते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि अभी हमें इस राज्य को अच्छा राजा प्रदान करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तब भी राजा इन्होंने सोचा भी, ब्राह्मणों ने इस प्रकार से सोचा कि राजा अंग जो है उनका डायनेस्टी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा अंग ध्रुव के राज्य में आए हैं, ध्रुव ध्रुव की लीनियस से, मतलब ध्रुव के क्या बोलते हैं, ध्रुव के वंश में इनका जन्म हुआ है, राजा अंग का वंश में जन्म हुआ है। ये वेणा केवल बीच में इस प्रकार से राजा आ गया, नहीं तो राजा अंग तक तो सभी लोग बहुत अच्छे थे। तो राजा अंग की फैमिली लाइन खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वेणा के डेड बॉडी को लिया और डेड बॉडी को मंथन करना चालू किया, चर्न करना चालू किया। और डेड बॉडी को जब चर्न किया तो एक छोटा सा व्यक्ति, बौना व्यक्ति एक बाहर आया सबसे पहले, उसका नाम था बाहुक। ये बाहुक व्यक्ति जो थे वो एक कौए के समान काले थे और एकदम छोटे से थे। और अपने जन्म के बाद बाहुक ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे बोला कि मेरा क्या कर्तव्य है। ऋषियों ने बोला कि आप बैठ जाइए, और उस बाहुक को उन्होंने नाम दिया, आप यहाँ नीचे बैठ जाइए। नीचे बैठने का मतलब होता है निषिद्ध। तो इस प्रकार से बाहुक का नाम हुआ निषाद, तो निषाद एक प्रजाति है, रामायण में ये आप जानते हैं निषाद राजगुह जो थे भगवान राम के मित्र, भगवान राम के मित्र थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो निषाद प्रजाति यहीं से प्रारंभ होती है। राजा वेण की डेड बॉडी को जब चरण किया ऋषियों ने मंत्र मंत्रोच्चारण के साथ, तो बाहुक का जन्म हुआ और इस बाहुक को निषाद नाम दिया गया। उसको निषाद जो प्रजाति है उसका राजा बनाया गया, उसका निषाद प्रजाति उससे प्रारंभ हुई। और उस प्रजाति के लोग, इस निषाद लोगों ने राजा वेण के जितने भी पाप कर्म थे उसको स्वीकार किया। इसलिए निषाद लोगों को अधिकार नहीं होता है कि वो सोसाइटी में रहे, जंगल में रहते हैं, क्योंकि वो सभी लोग पाप क्रिया कर्म में लगे रहते हैं, पाप कर्मों में लगे रहते हैं। इसलिए उनको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया कि आप वर्णाश्रम में रहे। तो राजा वेण के जो पाप थे वो निषाद ने स्वीकार किए और निषाद चले गए। उसके बाद वेणा का जो शरीर अभी शुद्ध हो चुका था, क्योंकि उसमें से पाप निकल चुका था, निषाद के रूप में ये पाप निकल चुका था। तो अभी जब वेणा के हाथों को जब चरण किया गया तो उसमें से एक मेल और एक फीमेल निकलते हैं, और मेल जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और फीमेल जो है वो लक्ष्मी देवी के अवतार है, आंशिक अवतार बोला जाता है। मेल का नाम होता है पृथु और फीमेल का नाम होता है अर्ची। इस प्रकार से ऋषियों ने फिर डिक्लेयर किया कि ये जो मेल है ये भगवान के अवतार है और फीमेल अर्ची लक्ष्मी के अवतार है। और पृथु, भगवान ने ये जो अवतार लिया है पृथु के रूप में, ये अवतार इसलिए भगवान ने लिया है जिससे वो लोगों को, पूरे संसार को ये शिक्षा दे सके कि आदर्श राजा क्या होता है, आदर्श राज्य क्या होता है। पूरे संसार में भगवान रामचंद्र और राजा पृथु और राजा युधिष्ठिर, इन तीनों को संसार की हिस्ट्री के सबसे बड़े राजा माना जाता है, भगवान रामचंद्र, राजा युधिष्ठिर और राजा पृथु। ये तीनों संसार के सबसे महान राजाओं में से माने जाते हैं। जब भी राजा, आदर्श राजा का नाम आता है, इन तीनों का नाम आता है। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे उसी समय गंधर्व भी आते हैं, गंधर्व उनके उनकी ग्लोरी सुनाते हैं, और सिद्ध लोग भी आके आकाश से पुष्प पुष्प चढ़ाते हैं, अप्सराएं भी डांस करते हैं, और इस प्रकार से शंख का स्वर, ड्रम्स बजाए जाते हैं, और देवता लोग और सभी लोग ऊपर से आके भगवान का स्वागत करते हैं। सभी ऋषि ऋषिगण गंधर्व किन्नर सभी लोग आके उनका स्वागत करते हैं। भगवान ब्रह्मा को जब पता चलता है कि भगवान विष्णु का इनकार्नेशन हुआ है, और भगवान विष्णु के इनकार्नेशन को चेक करते हैं, भगवान विष्णु के इनकार्नेशन को चेक करने का तरीका होता है, उसके पैर में कुछ कुछ साइन पाए जाते हैं, हाथ में कुछ साइन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के पैरों के चिन्ह शास्त्र में लिखे रहते हैं, कितने क्या क्या चिन्ह पाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आके वो सब कुछ चेक किया और वो चेक करके समझ गए कि ये भगवान के आंशिक अवतार के रूप में है। और इवेंचुअली पृथु महाराज तुरंत एक्चुअली बड़े हो गए। बहुत समय ऐसा नहीं लगा कि छोटा उनका पास्ट टाइम हुआ, छोटे बच्चे थे फिर बड़े हुए, बहुत जल्दी वो बड़े हो गए, क्योंकि वो आवश्यकता थी, कोई राज्य करने के लिए नहीं था। तो पृथु महाराज का राज सिंहासन पे अभिषेक हो रहा है, और जब उनका अभिषेक हो रहा था तो सभी नदियों से और समुद्र से सभी के सभी लोग आए, एक्चुअली सारी नदियां, समुद्र, पहाड़ और नाग लोक से लोग आते हैं, गाय, बछड़े, पशु सभी उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, अलग अलग उपहार लेके आते हैं। और भागवत में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किसने क्या उपहार प्रदान किया पृथ्वी महाराज को। कुबेर ने पृथ्वी महाराज को एक सिंहासन दिया, सोने का सिंहासन प्रदान किया। वरुण देव ने उनको एक छाता प्रदान किया, और वायुदेव ने दो चामर प्रदान किए, और धर्म ने उनको एक माला प्रदान की। इंद्रदेव ने उनको हेलमेट दिया, हेलमेट मतलब ऊपर क्या बोल सकते हैं, मुकुट प्रदान किया, हेलमेट को मुकुट बोलते हैं। यमराज ने उनको संसार का राज्य करने के लिए अपना यमदंड भी प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उनको एक रक्षा कवच प्रदान किया। ब्रह्मा जी की पत्नी ने उनको भारती, उनको दिव्य एक नेकलेस प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। लक्ष्मी देवी ने, भगवान विष्णु की वाइफ ने, उनको अपना ऐश्वर्य प्रदान किया, संसार का ऐश्वर्य प्रदान किया। भगवान शिव ने उनको एक तलवार प्रदान की जिसमें चंद्रमा से जड़े तो वो तलवार थी। और भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने एक उनको भाला, एक शील्ड प्रदान किया। इसी प्रकार से चंद्रदेव ने उनको घोड़े दिए, विश्वकर्मा ने उनको एक रथ दिया, अग्नि ने उनको एक धनुष दिया, सूर्य ने उनको बाण दिए जो कि सूर्य के समान ही शक्तिशाली थे, भूलोक के राजा ने उनको एक दिव्य शक्तियां प्रदान की, एक स्लीपर प्रदान की पहनने के लिए, एक स्लीपर प्रदान की, और बाकी अलग देवताओं ने उनको म्यूजिक का आर्ट प्रदान किया, ड्रामा का आर्ट प्रदान किया, अंतर ध्यान इनविजिबल होने की शक्ति प्रदान की, समुद्र ने उनको एक शंख प्रदान किया, नदियों ने और पहाड़ों ने उनको, उनका रथ नदी पहाड़ सब जगह जाने का अधिकार प्रदान किया। उनका रथ नदी पे भी चल सकता था, हवा में भी चल सकता था, इस प्रकार से उनको अधिकार प्रदान किया। और ये सब प्रदान करने के बाद जो ऑफिशियल लोग रहते हैं उनको सूत और मागध बोलते हैं, ऑफिशियल लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, राजा पृथु की प्रशंसा करने लगे। राजा पृथु ने मुस्कुराते हुए उनको रोका और रोक के पृथु महाराज ने बोला कि आप लोग जिन गुणों के बारे में मुझे मेरा बता रहे हैं कि मेरे अंदर जो गुण है वो अभी तक तो मेरे सामने आए नहीं है, इसलिए आपको मेरी इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान राजा पृथु की ये विनम्रता प्रकट होती है, अपनी प्रशंसा सुन के वो बोलते हैं कि आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी तक आप जो जो गुण बोल रहे हैं वो तो प्रकट हुए नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, अगर कुछ समय बाद ऐसा गुण कुछ प्रतीत होगा, मेरे द्वारा एग्जिबिट होगा, तो आप इस तरह से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अभी आप इस प्रकार से प्रार्थनाएं क्यों करते हैं। हमें भगवान के गुण या अच्छे गुणों को सामान्य लोगों के लिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि सामान्य लोगों में वैसे गुण नहीं पाए जाते हैं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से पृथु महाराज सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है, अपने फॉलोअर्स को अपने आप को अलाउ करता है प्रेज करने के लिए जब तक उसने वो गुण को प्राप्त नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रशंसा करता है कि अगर अगर आप केवल पढ़े लिखे होते तो आप अच्छे से स्कॉलर बन सकते थे, तो ये प्रशंसा कोई काम की नहीं है, ये एक चीटिंग के जैसी है। तो यही पृथु महाराज ने मना किया कि आपको इस प्रकार से मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जो चीज बोल रहे हैं वो मैंने अभी तक एग्जिबिट तो किया नहीं है, तो इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये उल्टा इंसल्ट के समान प्रतीत होती है। जो भी व्यक्ति जानता है कि प्रशंसा क्या कहलाती है वो इन सब चीजों को सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र है, बहुत फेमस है, शक्तिशाली है, वो वास्तविकता में अपनी खुद की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है। हर विनम्र व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि उसकी जब प्रशंसा की जाती है तो व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। जो घमंडी व्यक्ति होती है उनको लगता है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं तो सामान्यतः विनम्र लोग पसंद नहीं करते हैं, भले ही उनके अंदर सारे गुण हैं परंतु वो पसंद नहीं करते कि कोई व्यक्ति उनकी लगातार प्रशंसा करता रहे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने विनम्र तरीके से ये वस्तुएं बोली और सभी को बहुत पसंद आया पृथु महाराज का इस प्रकार से बोलना, परंतु तब भी वो भगवान पृथु को प्रशंसा करना छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जो ऋषि मुनि थे, महान ऋषि मुनि, उन्होंने बोला कि आप प्रशंसा कर सकते हो। तो ये लोग राजा पृथु प्रशंसा करने लगे और राजा पृथु की भविष्य के क्रियाकलापों को उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि राजा चूंकि आप भगवान के अवतार हैं इसलिए आपको ग्लोरीफाई करना इतना पॉसिबल नहीं हमारे लिए, पर चूंकि हमें इसको करने का टेस्ट है इसलिए हम आपकी प्रशंसा करने का प्रयास करेंगे, जैसा हमने अपने सीनियर से सुना है। फिर वो प्रशंसा चालू करते हैं कि ये राजा पृथु सूर्य देवता के समान शक्तिशाली होंगे, जिस प्रकार से सूर्य देव अपनी किरणों को सभी को प्रदान करते हैं उसी प्रकार से पृथु महाराज अपनी कृपा को सभी को प्रदान करेंगे, और जिस प्रकार से सूर्य देव 8 महीने तक पानी को सोखते हैं समुद्र से और फिर 4 महीने बरसात के पूरा पानी बांट देते हैं, उसी प्रकार से राजा पृथु अपने सिटीजन, अपने नागरिकों से टैक्स वसूल करेंगे, परंतु टैक्स के रिटर्न में वो सब कुछ, जब भी सिटीजन को आवश्यकता होगी तब वो सब कुछ उसको प्रदान करेंगे, और पृथु महाराज हमेशा सहनशील रहेंगे, लोगों को क्षमा करेंगे, और जब भी कहीं सूखा पड़ेगा तो पृथु महाराज खुद इंद्र के समान बारिश भी प्रदान करेंगे, और अपने विनम्रता से, अपने मुस्कुराने से और अपने सुंदर चेहरे से, चंद्रमा के समान अपने सुंदर चेहरे से वो सभी के शांति को बढ़ाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति पृथु महाराज को देखेगा तो अपने आप वो शांति को प्रदान करेगा, और पृथु महाराज की क्रियाएं इतनी ज्यादा रहस्यमय होंगी कि उनके शत्रु जो राजा हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि राजा पृथु किस प्रकार से राज्य कर रहे हैं। और राजा पृथु नागरिकों को अंदर से भी, उनके हृदय में क्या चल रहा है वो देखने में भी समर्थ होंगे, बाहर से भी देखने में समर्थ होंगे, और अपने पुण्य कार्य के कारण वो अपने पुत्रों से, अपने शत्रुओं से भी डील करने के समय न्यूट्रल रहेंगे, और अगर उनका पुत्र भी गलती करेगा तो उसको दंड मिलेगा। और सभी सिटीजन, सभी नागरिक उनको इस प्रकार से पसंद करेंगे जैसे कि भगवान विष्णु को स्वीकार किया जाता है। और राजा पृथु सभी स्त्रियों को इस प्रकार से सम्मान करेंगे जैसे वो उनकी खुद की माँ हो, और अपनी पत्नी को इस प्रकार से, अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार से व्यवहार करेंगे जैसे कि वो उनके खुद का बॉडी पार्ट हो। जैसे अपने शरीर की लोग देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से राजा पृथु अपनी वाइफ की देखभाल करेंगे। और सभी नागरिकों के लिए राजा पृथु एक पिता के समान होंगे, और राजा पृथु अपने आप को सभी ब्राह्मणों और भक्तों का एक सेवक के समान समझेंगे। इस प्रकार से रिसाइटर आगे बताते जा रहे हैं कि पृथु महाराज क्या क्या करेंगे, सारा फ्यूचर बता के उन्होंने बंद किया। उसके बाद उनको बहुत सारा गिफ्ट प्रदान करके वो लोग गए। इसके बाद पृथु महाराज की लाइफ स्टोरी और एक्टिविटीज फिर स्टार्ट होती है कि पृथु महाराज ने क्या क्या किया। पृथु महाराज के जन्म के पहले पूरी धरती पे बहुत अन्न की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए जो भी नागरिक थे वो भूख से परेशान थे। और जब पृथु महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो नागरिकों ने उनके पास जाके बोला कि हे राजन, जिस प्रकार से जब तक अगर कोई पेड़ है और पेड़ के तने के अंदर आग लगी हुई है तो वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, इसी प्रकार से हमारे पेट में भूख की आग लगी हुई है, उसके कारण से हम सभी का जीवन कठिन हो गया है और कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और चूंकि आप हमारे मालिक हैं, हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं, कृपा करके वो कुछ अरेंजमेंट करिए जिससे हम अपनी भूख को शांत कर सके। जब इस प्रकार से पृथु महाराज ने सुना तो बहुत चिंतित हुए कि क्यों नागरिक इस प्रकार से कर रहे हैं। और राजा पृथु ने इस प्रॉब्लम को देर तक सोचा और वो समझ गए कि क्या क्रियाकलाप है। और एट लास्ट पृथु महाराज ने ये कंक्लूड किया कि एक्चुअली में भोजन की कमी नहीं है, भोजन की कमी इस कारण से नहीं है कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं, भोजन की कमी इस कारण से है कि धरती कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, धरती ने अनाज प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। ये उनको समझ में आया क्योंकि लोग ऐसे नहीं थे कि लोग आलसी हों, लोग काम करने के लिए तैयार थे, परंतु काम करने के बाद भी धरती से अनाज नहीं निकल रहा था, धरती प्रोड्यूस नहीं कर रही थी सफिशियंट प्रकार से, ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। और जब राजा पृथु को ये कारण पता चला तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपना एक धनुष लिया, उस पर बहुत शक्तिशाली बाण लगा के धरती को फेंकना, बाण चला के धरती के ऊपर छोड़ने वाले थे। परंतु जब भूमि देवी ने देखा कि राजा पृथु इतने गुस्से में हैं, उनको मारना चाहते हैं, तो भूमि देवी एकदम परेश वो हो गई, एकदम भयभीत हो गई, और उन्होंने एक गाय का रूप लिया और भागने लगी। और जब राजा पृथु ने देखा कि भूदेवी भाग रहे हैं तो राजा उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और इस प्रकार से भूमि यहाँ वहां भागी, बाहर स्वर्ग में हर जगह भागी, परंतु उनको पता चला कि राजा पृथु से बचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। तो इस प्रकार से भूमि देवी ने राजा पृथु को सरेंडर किया और उनसे प्रार्थना किया कि हे राजा, आप तो अपने शरणागत लोगों को बचाने वाले हो, तो कृपा करके मुझे भी बचाइए, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आप तो धर्म को समझने वाले हैं, फिर आप इतने मुझसे क्यों गुस्से में हैं कि आप एक स्त्री, मुझे आप जानते हैं कि मैं स्त्री हूं, परंतु स्त्री को भी आप मारना चाहते हैं, जबकि शास्त्रों में तो लिखा है कि अगर स्त्री कोई पाप कर्म करती है तब भी उसको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, आप क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं। और साथ में भूदेवी ने यह भी बताया कि मेरे ऊपर ही आपके सारे नागरिक स्थापित हैं, तो अगर आप मुझे मार देंगे तो फिर आप कहाँ पे राज्य करेंगे, कैसे राज्य करेंगे। तो राजा पृथु अभी भी गुस्से में थे, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। राजा पृथु ने बोला कि आपने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, और हम लोग यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को आप स्वीकार करते हो, यज्ञ का भाग लेते हो, परंतु यज्ञ के रिटर्न में आप लोगों को सफिशियंट भोजन या फूड ग्रेन अनाज नहीं पैदा कर रहे हो। उस समय ऐसा होता था कि लोग खेती करते थे, मेहनत करते थे, अनाज पैदा नहीं होता था। तो भूदेवी बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ, परंतु जब मैंने देखा कि लोग नास्तिक हो गए हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, मैं जो उनको चीज देती हूँ वो केवल अपने भोग में उपयोग करते हैं, तो फिर नेचुरली मैंने अपनी चीजों को घटाना चालू किया। हम देखते हैं अभी भी ऐसा ही होता है, पहले जितनी फसल होती थी एक एकड़ में उतनी नेचुरली आजकल नहीं होती है, भूदेवी की प्रोडक्टिविटी कम खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि उसका क्या कारण है क्योंकि भूदेवी की सारी फसलें भगवान के लिए हैं, जो भी संसार की चीजें हैं वो भगवान के लिए हैं, और जो लोग हैं अगर वो नास्तिक बनते जाते हैं, भौतिकतावादी बनते जाते हैं, तो भगवान को कुछ चीजें देना नहीं चाहते, तो भूदेवी अपने आप अपनी गिफ्ट्स को कम करते जाते हैं। तो इवेंचुअली कलयुग में भी ऐसा होने वाला है, जितना जितना नास्तिकवाद बढ़ता रहेगा, लोग मांसाहार की तरफ जितना आगे जाते रहेंगे, भूदेवी उस प्रकार से कम करती रहेंगी, क्योंकि भूदेवी पापियों को खिलाना नहीं चाहती है। अगर कोई भगवान का भक्त है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उसको उसके लिए संसार की सारी वस्तुएं हैं उपयोग करने के लिए, परंतु अगर कोई पापी है तो फिर भूदेवी अपनी वस्तुओं को उनको नहीं प्रदान करती। तो इस प्रकार से भूदेवी ने बताया कि कोई भी निर्दयी व्यक्ति जो दूसरे पर दया नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। और गथु महाराज के गुस्से को देख के भूदेवी ने इस प्रकार से उनसे विनती की कि मैं तो आपका आपके शरीर का एक अंश हूँ, आपने ही मुझे क्रिएट किया है जिसमें सभी जीव रह सके, और पहले तो वराह देव के रूप में आपने मुझे बचाया था, फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे मारना चाहते हैं। आपको एक नाम भी मिला था धराधर, क्योंकि आपने धरा को धारण किया था, जब आप वराह देव के रूप में आए थे तो आपने मुझे अपने ऊपर धारण किया था, इसलिए आपका नाम धराधर है, परंतु अभी आप मुझे मारना चाहते हैं। तो फिर भूदेवी ने फिर बताया कि हाँ, आगे और भी भूदेवी प्रार्थनाएं भी करती हैं कि हे राजन, जो भी बीज हैं, जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो अनाज है, जो भी ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, वो चूंकि अभक्त लोग यूटिलाइज कर रहे थे, और चूंकि कोई भी प्रॉपर राजा नहीं था उन पापी लोगों को दंड देने के लिए, और जितने भी चोर थे वो इन सब अनाजों को उपयोग कर रहे थे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, यज्ञ करने के बजाय अपने भोग करने के लिए मेरी चीजों को उपयोग कर रहे थे, इसलिए मैंने उन सब चीजों को अपने अंदर छुपा दिया था। और अगर आप चाहते हैं उन फिर से उन सब वस्तुओं को प्राप्त करना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको धर्म को स्थापना करना होगा, अगर लोग धार्मिक होंगे तो वो चीज फिर से प्राप्त हो सकती है। अगर आप लोगों को सफिशियंट ग्रेन सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक तीन चीजें जरूरत करना होगा। मैं एक गाय के रूप में रहती हूँ, आपको एक बछड़ा लाना होगा, एक बर्तन लाना होगा, और मिल्कमैन दूध दूध दुहने वाला आना होगा, और फिर आप मुझसे वो चीजों को स्वीकार कर सकते हैं गाय के रूप से। वो मिल्कमैन जो है वो मुझे दुहेगा और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और साथ साथ भूदेवी ने बोला कि उसके साथ साथ मेरे सरफेस को भी आप लेवल कर दीजिए, क्योंकि उसके पहले पृथु महाराज के पहले धरती का सरफेस बहुत ऊंचा नीचा था। तो उन्होंने भूदेवी ने बोला कि आप मेरे सरफेस को लेवल कर दीजिए, जिसके कारण से प्रोडक्शन ऑफ फूड बढ़ जाएगा, क्योंकि खेती की जमीन ज्यादा निकल आएगी, और जब पानी को भी रोक सकेंगे, उसके कारण से फिर लोगों को ज्यादा अनाज प्राप्त होगा। तो राजा पृथु ने यह स्वीकार किया और शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने स्वाय इस उसके बाद फिर भूदेवी से चीजों को लेना स्वीकार किया। सबसे पहले मनु जो थे, स्वयंभू मनु, उनको बछड़े के रूप में बनाया गया, और उन्होंने भूदेवी से सारी जड़ी बूटियां और अनाज प्राप्त किए। उसके बाद राजा पृथु के पदचिन्हों पर चलते हुए दूसरे अलग अलग लोकों से भी लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त की। जैसे महान ऋषि मुनि आए, उन्होंने बृहस्पति को एक बछड़ा बनाया और इंद्रियों को प्राप्त किया, और वैदिक नॉलेज इंद्रियों को एक पॉट बर्तन के जैसा रखा, और वैदिक ज्ञान उस इंद्रियों में प्राप्त किया, उस पॉट में प्राप्त किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोम रस प्राप्त किया। सोम रस पाने के बाद देवता बहुत शक्तिशाली हो गए। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और अलग अलग प्रकार के लिकर्स को प्राप्त किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्व वसु को बछड़ा बनाया, और अच्छा स्वीट म्यूजिक और सुंदरता को उन्होंने मिल्क के रूप में प्राप्त किया। इसी तरह से पितृलोक के लोगों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया, और काव्य काव्य एक वस्तु होती है जो कि पूर्वजों को ऑफर की जाती है, वो प्राप्त किया। उसके बाद सिद्ध और विद्याधरों ने भगवान कपिल को बछड़ा बनाया और सिद्ध शक्तियां प्राप्त की, और किम पुरुष जो थे उन्होंने मयदानव को बछड़ा बनाया और अंतर ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार से यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच सभी ने भूदेवी से इस प्रकार से वस्तुओं को प्राप्त किया। नंदी नंदी जो थे उनको बछड़ा बनाया गया, और ग्रीन ग्रास घास को प्राप्त किया गया। इस तरह से राजा पृथु के राज्य में धरती ने सभी को जो वस्तुओं की आवश्यकता थी सबको सप्लाई की, और इसके कारण से महाराज पृथु बहुत संतुष्ट हो गए धरती के साथ, और वो अब धरती को अपने पुत्र के समान, फिर पुत्री के समान मानने लगे। और राजा राजा ने फिर धरती को लेवल भी कर दिया, और जितने भी बड़े बड़े हिल थे उनको तोड़ के धरती को लेवल, एक लेवल सरफेस कर दिया। उसके बाद उन्होंने जमीन को अलग अलग रेसिडेंशियल क्वार्टर में डिवाइड किया, और ये अलग अलग सेक्शन अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्पस के लिए थे। और इस प्रकार से पृथ्वी महाराज ने बहुत सारे सिटी, बहुत सारे गांव, बहुत सारे जंगल, बहुत सारी खेती की जमीन और सब वस्तुओं को प्राप्त किया। पृथ्वी महाराज ने जो जिस प्रकार से डिवीजन किया, वो सबसे पहला डिवीजन था, सिटी का, गांव का सिस्टमेटिक डिवीजन था, क्योंकि उसके पहले लोग सामान्यतः ग्रुप में रहने लगते थे, परंतु स्ट्रक्चर पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पृथ्वी महाराज ने स्ट्रक्चरल सिटी, गांव, खेती की जगह, इन सबको डिजाइन किया। जिस प्रकार से अभी मॉडर्न डिजाइनिंग उतना कुछ नहीं होता है, लोग आके रहने लगते हैं, सिटी बस जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। पृथ्वी महाराज ने बहुत सिस्टमेटिक डिजाइन किया। कुछ कुछ शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि जब कोई सिटी को डिजाइन करते हैं कैसे करना चाहिए, वो सारे डिस्क्रिप्शन पृथ्वी महाराज के क्रियाकलाप से ही आते हैं। क्योंकि पृथ्वी महाराज के समय के पहले कोई प्लान्ड सिटी, विलेज या फार्म्स नहीं होते थे। हर व्यक्ति अपना कंस्ट्रक्शन, अपना रेसिडेंस कंस्ट्रक्ट कर देते थे अपनी खुद की इच्छा के आधार पर। पृथ्वी महाराज ने उसको प्लान तरीके से किया। इसके आगे पृथ्वी महाराज के और भी क्रियाकलाप हैं, बहुत सारे वस्तु हैं। पृथ्वी महाराज यज्ञ करते हैं, उसके बाद फिर चार कुमार आते हैं, पृथ्वी महाराज उनकी सेवा करते हैं। तो शायद एक दो क्लास और लगेगा पृथ्वी महाराज की एक्टिविटीज को समझ दिखाने के लिए। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज के सेशन से या कोई और सेशन से कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। इनके से अगर नहीं पूछना है तो मैं जस्ट एक अनाउंसमेंट जैसा है कि कल से एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग चालू करने वाला हूँ। तो कल की क्लास का मुझे थोड़ा कठिन लगता है, कल और कल मैं, क्योंकि इस समय पे अहमदाबाद या सुरेंद्रनगर में से कहीं एक जगह पे रहूंगा, तो वहां पे पता नहीं, हो सकता वहां पे टेम्पल में क्लास हो, और किस प्रकार से होगा वो मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, इसलिए कल की क्लास के लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है। कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक मैं बाहर रहूंगा। तो परसों सुबह गीता गीता क्लास तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में तो मेरा फिक्स शेड्यूल है, उस बाहर जाना है, कुछ 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 चीजें हैं जो कि ऑब्जर्व करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। तो परसों का गीता क्लास तो नहीं होगा। परसों शाम की क्लास के लिए मेरा कुछ फिक्स नहीं है, वो परसों सुबह मैं देख पाऊंगा। ओके, तो केवल एक एक दो हफ्ते का ये प्रॉब्लम है, जो मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि इस हफ्ते मैं ट्रेवल चालू करूंगा, तो करीब एक हफ्ते तक मैं बाहर रहूंगा। तो जैसा भी क्लास रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे को जो भी क्लास रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी मॉर्निंग को है, मैं अनाउंस कर दूंगा। उस हिसाब से आप लोग जस्ट व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, उससे पता चलता रहेगा। एक बार ये ट्रेवलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रेगुलर चल सकता है क्लास। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है किसी
मेरा
को तो हाँ पूछो तुम।
एक प्रश्न है प्रभु जी।
यस प्रभु,
मेरा इस क्लास से नहीं है प्रभु जी, बट मेरा ऐसे एक, मैंने प्रभु जी जैसे क्लास में सुना है कि देवताओं के पास भी श्रीमद् भागवतम है, जिसमें शायद 1 लाख श्लोक हैं।
हाँ, देवताओं के पास श्रीमद् भागवतम है, हर लोकों में श्रीमद्
तो प्रभु
भागवतम है।
जी, और मैंने जी प्रभु जी, तो प्रभु जी इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे कि प्रभु जी, अगर उनके पास भागवतम थी तो जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे तो तब देवता आए थे कि आप इनको, परीक्षित महाराज को, अमृत का एक घड़ा दे दो और ये श्रीमद् भागवतम आप हमें हमें मतलब हमें दे दो उसका। तो प्रभु जी ऑलरेडी जब उनके पास थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया प्रभु जी, एक ही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे बोलते हैं कि किसी को भी अगर बैकुंठ जाना है या भगवान गोलोक वृंदावन धाम जाना है तो सभी को धरती से जाना पड़ेगा, धरती में आके तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भक्त बन के वो जा सकते हैं जबकि वहां से नहीं जा सकते। तो प्रभु जी अगर
हाँ,
वो वहां पे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तो वहां से भी जा सकते हैं प्रभु जी, तो इसलिए 2 क्वेश्चन थे।
एक्चुअली श्रीमद् भागवतम जो है वो एक कोई ग्रंथ जैसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम मतलब भगवान की गुण और भगवान का गुण कीर्तन और भगवान का लीला कीर्तन और नाम कीर्तन, उसको भागवत बोला जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ऐसा नहीं है कि भागवत ग्रंथ जो 18,000 या 1,00,000 श्लोक वाले हैं वो देवता लोग पढ़ते हैं, परंतु देवताओं को भगवान की लीलाएं पता होती हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी से मांगने आए थे तो वो स्पेशल चीज थी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की जो भागवतम है वो सुखदेव गोस्वामी के बोलने के कारण नेक्टेरियन हो गई है, और चूंकि व्यासदेव ने लिखी है और सुखदेव ने बोला है। और देवता लोग जब वहां पे सुनते हैं तो या तो बृहस्पति सुनाते हैं या देवता खुद पढ़ते हैं, तो क्योंकि वो खुद भी शुद्ध भक्त नहीं है और प्रामाणिक इस प्रकार से भगवान के एसोसिएट से नहीं सुनते हैं, तो उस प्रकार की इच्छाएं उनकी बनी रहती हैं। परंतु तो अगर कोई देवता भागवतम सुनते हैं ध्यान से, इनकेस वहां पे भी ऐसा होता है कि भागवत का अगर किसी को रस मिलता है तो फिर वो देवता अपना शारीरिक शरीर छोड़ के, देवताओं का शरीर छोड़ के इवेंचुअली धरती पे आके जन्म लेते हैं, भक्ति करके भगवत धाम जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। परंतु भागवतम वो सुनते हैं, परंतु अगर भक्ति करना होता है तो उनको अपना जो देवताओं का जो ऑफिस है, कार्यकाल है, वो पूरा करने के बाद धरती पे आके भक्ति करना होता है, फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं, डायरेक्टली वहां से नहीं जा पाते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी के पास आए थे तो स्पेशली वो इस पर्पज से आए थे कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनना और उस नरेशन को भाग लेना, वो उनका मेन उद्देश्य था। क्योंकि भागवतम सुनना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, परंतु अगर स्पीकर सुखदेव गोस्वामी जैसा हो तो वो फिर अलग ही, उसका उद्देश्य अलग हो जाता है, उसका आउटकम भी अलग हो जाता है। ओके
जी जी ब्रो जी, थैंक यू ब्रो जी, हरे
ओके।
कृष्ण।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे।